हमारी मर्जी तुम बोलो उसकी जय जय गुरुदेव जय मेरे गुरुदेव तुम्हारे गुरुदेव तुम जानो मेरे गुरुदेव जय गुरुदेव मैं तो मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूँ तुम्हारा गुरुदेव तुम जानो जय गुरुदेव जय गुरुदेव मेरे गुरुदेव प्यारे गुरुदेव ए मेरी जय मत बोलो चुप रहो जय गुरुदेव प्यारे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मैं तो अपने गुरुदेव को कह रहा हूँ आप ये करो कोई जरूरी नहीं है प्यारे गुरुदेव मेरे गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान में श्रद्धा कैसे होगी गुरु का ज्ञान नहीं होगा तो भगवान तत्व का ज्ञान कैसे होगा और जीवन में अगर श्रद्धा नहीं तो घुट घुट के मरने के सिवाय क्या है भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम अष्टावक्र कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व वेदों में तो पुरुष सुप्त है कि श्रद्धा रूपी माँ तो हमारे हृदय में सदा निवास करना प्रातः काल की संध्या के समय प्रार्थना की गई कि श्रद्धा माँ तो हमारे हृदय में सदैव निवास करना दोपहर की श्रद्धा में प्रार्थना की गई श्रद्धा रूपी माँ तो हमारे हृदय में स्थिर रहना श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदाहा श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि पत्थर की मूर्ति में हम श्रद्धा करते तो हरि हमारी श्रद्धा का आदर करके प्रकट हो सकते हैं तो हयात महापुरुष में श्रद्धा नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे नहीं तो फिर अश्रद्धालु तो घुट घुट के मरेगा मैं अगर मेरे गुरुदेव लीलाशाह बापू में श्रद्धा नहीं करता शास्त्रों में श्रद्धा नहीं करता तो मैं बुरी तरह भटक जाता ऐसे लोग मिले थे कि आप भगवान की भक्ति करो और तीन जन्मों के बाद मुक्ति होगी ऐसे लोग भी मिले कि आपको साधना सिखाते 12 साल इधर 12 साल इधर 12 साल इधर 12 साल इधर साधना करो लेकिन शास्त्रों में और सदगुरु में श्रद्धा थी कि जनक को अष्टावक्र की कृपा से रकाब में पैर डालते डालते तू मिल सकता है सुखदेव जी की कृपा से परीक्षित को 7 दिन के सत्संग में तू मिल सकता है महावीर को तू 12 वर्ष के भीतर मिल सकता है बुद्ध को तू 7 वर्ष में मिल सकता है तेरे लिए समय की अवधि नहीं है मेरी तड़प बढ़ा दे और तेरा दीदार दे दे मेरे प्रभु मेरे देव ईश कृपा बिन गुरु नहीं भगवान में श्रद्धा थी तो गुरु मिले और गुरु में श्रद्धा थी तो भगवान का स्वरूप समझ में आ जाता है भगवान का स्वरूप सहज है भगवान हमको कभी छोड़ नहीं सकते हैं हम भगवान को छोड़ नहीं सकते फिर भी अभागे संसार की आसक्ति ने विषय विकारों ने हमें पचा पचा कर मारा है और पचा पचा कर जन्माया माँ के गर्भ में आए तो क्या बिना पक्के मैं आया तुम्हारा बापूजी बिना पक्के बापूजी बना बेटा जी बना अथवा तुम बिना पक्के आए हो गर्भागिरी ने ऐसा पकाया है कि तो ठीक है याद भूल गए बाकी तो दोबारा ईंट तो 7 दिन में पकती है नेवे में लेकिन आपका ये माँ बाप का रजवीर्य नौ नौ महीने पकता है तब हड्डियां बनकर बालक बनकर आप हम जन्मे हैं। ए श्रद्धा देवी, अब तू प्रभु में श्रद्धा करा दे, शरीर से बहुत कुछ श्रद्धा हो गई। एक होती है नित्य में श्रद्धा, दूसरी होती है अनित्य में श्रद्धा। शरीर संसार भोग संसार का सुख दुख ये अनित्य है, आत्मा परमात्मा और गुरु का वास्तविक स्वरूप ये नित्य है, अपना वास्तविक स्वरूप नित्य है। आप अपने वास्तविक स्वरूप में श्रद्धा करिए, अपने सतगुरु में श्रद्धा करिए, सत्य शास्त्र में श्रद्धा करिए, ईश्वर में श्रद्धा करिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो महाराज घुट घुट के घूंट पीने हैं, जहर के अमृत संबंध के भी जहर के ही घूंट पीने। बाहर से सुंदर रूपवान ललना दिखी अथवा सुंदर लवर दिखा, लेकिन जिनके जीवन में आत्मा परमात्मा की श्रद्धा नहीं, बाहर से मेकअप करके सुंदर दिखते हैं, लेकिन क्या सौंदर्य है कि सोने के कलश में विष भरा है, मलमूत्र भरा है, हाड़ मांस भरे हैं, क्या भरा है, काम क्रोध भरा है, लोभ मोह भरा है, चिंता जलसी भरी है। उन शरीरों में श्रद्धा कर करके तो खप जाएंगे, लेकिन शरीर जिससे दिखते हैं उस आत्मा में श्रद्धा हो जाए, उस परमात्मा में प्रीति हो जाए, परमात्मा को दिखाने वाले सतगुरु में श्रद्धा हो जाए, तो उसके जीवन में 11 महागुण विकसित होने लगते हैं। अगर किसी सद्गुरु में श्रद्धा हो गई तो 11 महागुण विकसित होने लगते हैं। अब एक गुण भी अगर दिखे तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा है और हमारी श्रद्धा का कुछ रंग है। श्रद्धा तो संसारी व्यवहार में भी चाहिए। राज्य हार रहा था बुरी तरह, एक महात्मा आ गए, बोले राजा ये सब सेनापति और सैनिक मूर्ख हैं, मुझे सौंप दो और तुम्हारी हार अगर जीत में नहीं बदलता हूं तो तुम मुझे साधु संत मत मानना, मुझे एक तुच्छ स्वार्थी भिखमंगा समाज पर बोझा डालने वाला समाज शोषक समझकर मुझे बुरी तरह मृत्युदंड दे रहा हूं। साधु की आत्मश्रद्धा की वाणी सुनकर हंसी उड़ाने वाले सैनिक और शंका करने वाला राजा स्तब्ध हो गए, क्योंकि साधु की अपने आप पर श्रद्धा थी और साधु की श्रद्धा की महिमा जानने की कला थी साधु के पास। सेनापतियों को और सेना को ले गया, बोले अब जो राजा ने कह दिया है मेरा ऑर्डर चलेगा, तो मेरा आदेश है कि पहले मां भवानी के मंदिर में जाएं और मां भवानी की आज्ञा लें कि मां अगर हम विजयी होने वाले हैं तो बाघ दिखा बाघ, अगर हम हारने वाले हैं तो कांटा दिखा। तीनों बार करेंगे, अगर दो बार बाघ हो गया तो मां विजय की बात बताएगी, अगर तीन बार हो गया तो कहना ही क्या। उस साधु ने उछाला सिक्का जोर से गिरा, भाग भाग भाग, ठहरो दूसरी बार उछाल लेंगे। खूब जोर से उछाला और कईयों ने देखा, सेनापति जैसों ने भी, भाग भाग भाग। हे मां अगर हमारी विजय में 19-20 भी हो तो फिर तू कांटा कर देना, अगर हमारी विजय में 101% तू राजी है और विजय होके रहेगी तो मैया तीसरा भी बाघ दिखाना। उछाला ऊंचे से और तीसरा भी बाघ, मार खाती हुई सेना, पीछे हट करती हुई सेना में श्रद्धा का ऐसा दिया जगमगाया कि जैसे हाथियों के झुंडों पर एक शेर भारी हो जाता है, ऐसे हारी थकी पलायनवादी सेना में श्रद्धा का संचार हुआ। सूर्य अस्त होने के पहले पहले शत्रु सेना का सूर्य अस्त कर लिया और राजा तेज बहादुर विजय का झंडा फहराने में सफल हो गया। राजा ने महात्मा का स्वागत किया। महात्मा, ये आपके पास कौन सा जादू था? बोले, वो सिक्के का जादू था मेरे पास। राजा, देखो, मैंने सिक्का बनवाया, उसको दोनों बाजू बाघ छपवाया है, कांटा है ही नहीं। इनके जीवन में जो मर जाएंगे, गिर जाएंगे, ये था, और सेनापति भी नेगेटिव पॉजिटिव वाले थे, इसीलिए तुम्हारा राज्य हार खा रहा था। मैंने नबज समझ ली थी और मैंने सिक्का, देख लो ये मेरा, इधर घूमेगा गिरेगा तो भी भाग पड़ेगा, उधर गिरेगा तो भी भाग पड़ेगा। सिक्का ऐसा बनवा लिया सुनार से। जब झूठ मूठ सिक्का भी सच्ची सफलता दे सकता है तो परमात्मा तो सचमुच में है और गुरु की कृपा सचमुच में है, आंसू मल से आशाराम बना सकती है। नारायण नारायण नारायण, अगर मैं गुरुदेव में श्रद्धा नहीं करता तो मेरी क्या दुर्दशा होती। बूढ़ा, 65 साल का बूढ़ा अस्पताल में मैं पड़ा रहता, अथवा परिवार की गाड़ी घसीटते घसीटते थके बैल की नहीं, फिर किसी की कृपा चाहता कि बेटे का कुछ कर देना, बेटी का कुछ कर देना, जमाई का कुछ कर देना। ये श्रद्धा देवी अनित्य शरीर में नित्य आत्मा का दीदार करा देती है। मरण धर्मा शरीर में शाश्वत प्रभु जो छुपे हैं उसको दर्शन उसका करा देती है। अब मरण धर्मा शरीर में शाश्वत प्रभु कैसे छुपे हैं, आज गुरु के दुलारे ही आए होंगे। न्यूग्रे लोगों की भीड़ इस पर्वों पर नहीं की जाती, तो थोड़ा सा समझ लेना। मैं ज्यादा समय तुमको तपस्या नहीं करवाता हूं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेना। गीता के 70वें अध्याय का 70वां श्लोक है, श्रद्धया पयास्तप्तम तपस्त त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षी भीर युक्त सात्विकम परिचक्षते। परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा तीन प्रकार की शरीर वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा तो होती है, राजसी श्रद्धा भी होती है, तामसी श्रद्धा भी होती है, लेकिन जिस श्रद्धा से शरीर को कष्ट देने में भी परवाह ना लगे, धूप है तो धूप है, रजोगड़ी दूर है तो दूर है, बापूजी देर से आएंगे तो देर से आएंगे, लेकिन मिलना है, मतलब सात्विक श्रद्धा हो गई। जो शरीर से तप करा दे, मन से तप करा दे और वाणी से तप करा दे। भगवान नाम जप किया, ये वाणी से तप, किसी को कटु वाणी नहीं बोलना, ये वाणी से तप है। रमण महर्षि के पास एक पंडित आया, एक सवाल किया, दूसरा सवाल किया। पंडित को शंका का समाधान या ईश्वर प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं था, मैं बड़ा विद्वान। दो चार सवाल उठपटांग किए, रमण महर्षि ने उत्तर दिया। फिर महर्षि समझ गया कि इसका कल्याण कैसे होगा, उठाया डंडा। वो तो पंडित भागा और रमण महर्षि बुड्ढे पीछे, भागने में वो भी जवान, भागे 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 भागे, लोग दंग रह गए कि क्या हो गया महर्षि जी को। अरे महाराज, कई किलोमीटर उस समय मील थे, कई मील, वो भगाते भगाते फिर आए, डंडा रख दिया और चेहरे पर ऐसी सौम्यता, लेखक लिखता है कि रमण महर्षि जी के चित्त पर और चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता कभी नहीं देखी। आया परोपकार करने का भाव और क्रोध को बुलाकर क्रोध भी ऐसा किया पूरा, और क्रोध किया गया, आया नहीं, बुलाया गया था। जैसे उठाया और रखा, ऐसे ही जिसके जीवन में ज्ञान संयुक्त श्रद्धा होती है, सत्व प्रधान श्रद्धा होती है, वो काम को, क्रोध को, लोभ को, व्यवहार को बुलाकर ठीक से कर लेगा। आपको पता है कि सच्चा भिखमंगा इतना आक्रांत नहीं कर सकता है जितना नट कर सकता है। सच्चा राजा इतना रुबाब नहीं मारता जितना रंगमंच का राजा रुबाब मारता। मैं लंकापति रावण हूं, यह आपने सीरियल में देखा होगा, असली रावण इतना नहीं करता होगा। क्या ख्याल है? निहत्था कृष्ण पूरी सेना को भारी है भौंजे, ये सीरियल का शाकुनी कर सकता है, असली शाकुनी इतना नहीं कर सकता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो एक सत्व को जान लिया, फिर व्यवहार ज्ञानी के लिए एक नाट्यशाला हो जाती है। उस व्यवहार में बराबर पूर्ण, क्योंकि पूर्ण को पाया है तो जो भी करेगा पूर्ण। डांट दी तो पूर्ण चुप कैसी हो गई, हाथा जोड़ी करके आए तो पूर्ण नम्रता, और रुबाब दिखाए तो पूर्ण। रुबाब दिखाने में भी हम पीछे नहीं हटते, और मत्था टेकने में भी हम पीछे नहीं हटते। जिससे तुम्हारा भला हो हम ये शरीर से करवाने को तैयार है। आज पीत वर्ण पहरा है, पीतांबरधारी पीला वस्त्र, आध्यात्मिकता में श्वेत वस्त्र पीला वस्त्र शांति देता, ये पीले रंग वस्त्र का अलग गुण है, श्वेत का अलग गुण है। इसलिए मैं आज चलो आज नवीनता दिखेगी, भक्तों को आनंद आएगा, अपने बाप का क्या जाता है। नौ ताली बस। अब सुनो, एक होती है सात्विक श्रद्धा, वो शारीरिक तप, मानसिक तप और वाणी का तप कराकर साधक के दोषों को मिटाकर परम तत्व परमात्मा में यही जागृत कर देती है। परम तत्व परमात्मा में कैसे जागृत होता है? सात्विक श्रद्धा वाला गुरु की आज्ञा पालेगा, तपस्या से शुद्ध हुआ है तो वो बात सुनने का अधिकारी है। मैं तुमको अधिकारी मानकर सुनाता हूं। एक होता है यह, दूसरा होता है मैं, होता है ना, मैं तू यह और वह, चार होता है ना, मैं तू यह और वह। मैं की अपेक्षा तू है, इधर अपने को मैं बोलूंगा तो आप तू हो गए, आप अपने को मैं बोलेंगे तो मैं तू हो जाऊंगा। ठीक है, यह बोलेंगे तो यह की अपेक्षा वह हो जाएगा, वह बोलेंगे तो वह की अपेक्षा यह हो जाएगा। तो मैं तू यह वह बदलता है, ठीक है, लेकिन इसको जानने वाला नहीं बदलता, वो है रब, वह है आत्मा। कितना निकट है, यह शरीर है बदला, यह मन है बदला। तू दिखता था अब पहले जैसा नहीं है, वो दिखता था पहले जैसा नहीं है, यह दिखता था पहले जैसा नहीं है, और मेरा शरीर मैं दिखता था पहले जैसा नहीं है, उसको जानने वाला कौन है? यह आज एकदम नया पाठ है। यूं ब्रह्म ज्ञान हो जाए, यूं परमात्मा प्राप्ति हो जाए, जिसके पल्ले पड़ेगा तो बस उसकी यात्रा तो यूं होगी। आज मैं बहुत ध्यान भजन करके खूब पी कर आया, पिया हुआ आदमी कुछ भी लुटा देगा। नारायण नारायण, संसारी शराब पिया हुआ तो अनर्थ करेगा, लेकिन आध्यात्मिक प्यालियां पिया हुआ है, है। शिष्य जा रहा था, गुरु ने कहा पागल कहां जाते हो, वो तैयार तो मैं तैयार नहीं, कभी मैं तैयार तो वो तैयार नहीं, कभी कई वर्षों में ऐसी घड़ी आती कि वो तैयार और मैं तैयार, तो तू पीठ दिखा रहा है बैठ कुछ दिन, अब मैं तैयार हो रहा हूं छलकने को, वो भी तैयार है तो तू काय को भागता है, रुक जा बेटे कुछ दिन, रुक जा, बरसते बरसते बरस गया और पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान। ये मैं अब इस है तो रामायण का लेकिन ये मेरे ऊपर आप नहीं घटित करना, ये समझाने के लिए शब्द मैंने कह दिए। ऐसी घड़ी आती, ऐसा ज्ञान बैठ गया सात्विक ज्ञान वाले को, श्रद्धा और विश्वास ये विशुद्ध प्रकाश है, विशुद्ध प्रकाश है, विशुद्ध बल है, विशुद्ध संबल है, हारे हुए की हिम्मत है, निराशा की आशा है, और श्रद्धा विश्वास वाला पत्थर से प्रभु को पैदा कर सकता है। श्रद्धा विश्वास वाला माता और पिता से प्रभु को निहार सकता है। श्रद्धा विश्वास वाला गुरु के हृदय से परमात्मा को छलका सकता है। और श्रद्धा विश्वास वाला जब उनके दिलों से छलका सकता है तो अपने दिल में छुपे हुए को जानने में भी तो सफल हो जाएगा। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा, जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं है, परमात्मा में शास्त्र में गुरु में विश्वास नहीं, वे बाहर से कितने भी सुंदर दिखे, टिप टाप दिखे और वैभववान दिखे, लेकिन बाहर से सोने का कलश और अंदर भरा हुआ विष, अंदर भरी हुई मलिन चीजें क्या कर लेगी। ऐसी अंदर भरा है काम क्रोध और मेकअप का केमिकल, बाहर शरीर पर सुंदर स्वरूप दिखे, एक दूसरे को अशांति देंगे, एक दूसरे को बुढ़ापा देंगे, एक दूसरे को शोषित करेंगे। सुंदर सुहावने महल और कई फार्म हाउस मैंने देख लिए, लेकिन मूर्ख कारीगरों ने उन फार्म हाउसों की भी ऐसी तैसी कर दी कि बाथरूम का पानी जहां जाना चाहिए वो नहीं, उल्टी जगह पर पड़ा रहता है। एक बार कोई सीटी मार के आया तो बाथरूम में वही मसाला पड़ा रहे। अगर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सुंदर आपका बाथरूम भी थोड़ा सा कारीगर ने बेवकूफी की तो गंदा ही रहेगा। ऐसे ही आपके जीवन में कितनी भी कुशलता हो, श्रद्धा की सूझबूझ नहीं है, शास्त्र की सूझबूझ नहीं है, गुरु की सूझबूझ नहीं है, तो हार्ड मास के शरीर को मैं मानने की बेवकूफी बनी रहेगी। शरीर के बड़ेपन को बड़ा, अपने को लंबा चौड़ा मानोगे, शरीर के बीमारी को अपनी बीमारी मानोगे, मन के दुख को अपना दुख मानोगे, मन की चिंता को अपनी चिंता मानोगे और शरीर की मौत को अपनी मौत मानोगे। ये बेवकूफी बनी रहेगी। अगर श्रद्धा विश्वास सत्संग नहीं है तो ये बेवकूफी मिटी नहीं। कारीगर की थोड़ी सी बेवकूफी से बाथरूम में बाथरूम ही पड़ा रहता है, गंदगी की जगह पर गंदगी पड़ी रहती, ढाल उल्टा दे दिया, ऐसे ही उल्टी समझ बनी रहेगी। मरने वाले शरीर को मैं मानेंगे और जहां से ये मैं तू यह वह दिखता है उस परमात्मा का ज्ञान अश्रद्धालु सुन नहीं सकता, सुन भी जाए तो टिकेगा नहीं। दूसरी होती है राजसी श्रद्धा। श्रद्धावान मनुष्यश्च सुन्यादपि यो नरः सोपि मुक्त सुलभान लोकान प्राप्नुयन्तु पुण्यकर्मणा। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता के ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्यकारी के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। समझो आत्मा परमात्मा में टिके नहीं है तो भी सुनने के फल से पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी। अब अश्रद्धालु पुण्य लोकों में नहीं जाएगा, नर्क लोकों में जाएगा, नर्कों को भोगकर फिर चंद्रमा की किरणों के द्वारा पड़ेगा, प्रसाद के द्वारा पड़ेगा और अन्न में फल में सब्जियों में आएगा, जीव जंतु और मनुष्य खाएंगे, नर के शरीर के द्वारा मादा में जाएगा, गर्भ मिला तो कुत्ता बिल्ला घोड़ा गधा भैंसा कौवा चिड़िया आदि का गर्भ मिला तो वो बनेगा, मनुष्य के शरीर में माँ के शरीर में गया और माँ ने गर्भ नहीं रहा तो बाथरूम में बहना पड़ेगा उसको। चाहे कितना भी बड़ा तार्किक नास्तिक हो, उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि पति पत्नी के संयोग से जो चीज निकलती है उस एक बूंद में 3,000 जीव होते हैं। तो क्या बुरा हाल होता है। एक जीव सबल टिक जाता है तो मनुष्य बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, वकील बन जाता है, सीए बीए बन जाता है, जोगी तपस्वी बन जाता है। लेकिन कितनी बार बाथरूम में बहने बहने के बाद कहीं गर्भ मिल जाता है, और मनुष्य शरीर में अगर श्रद्धा नहीं तो फिर वही बुरी हालत चालू हो जाती है। तो श्रद्धा का जितना आदर करें, श्रद्धा के साथ तत्परता भी होनी चाहिए ईश्वर प्राप्ति की, और श्रद्धा के साथ थोड़ी सतर्कता भी होनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा का कोई दुरुपयोग तो नहीं करता है। पूर्ण गुरु है कि कन्या मन्या कुर तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर, अला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू, कहीं तामसी उपासक तो नहीं है तो मेरी श्रद्धा देवी मुझे उन्हीं लोकों में ले जाएगी। तो श्रद्धा सात्विक हो और सतगुरु में, जिन्होंने सत्य स्वरूप ईश्वर को जाना है और आपको सत्य स्वरूप ईश्वर के तरफ ले जाना जिसका स्वभाव है। देखो सत्य को जिसने जाना है, जिसने परमात्मा को पाया है, परमात्मा के रंग में रंगा है, वो दूसरों को किसके रंग में रंगेगा। शराबी दूसरों को किस रंग में रंगेगा, जुआरी दूसरों को किस रंग में रंगेगा, भंगेड़ी दूसरों को किस रंग में रंगेगा। एक अच्छे ऊंची कमाई के धनी संत जिनको गायत्री के दर्शन हुए, हनुमान जी के साथ सूक्ष्म शरीर से उड़ान भरी, उस संत की मैं बात कर रहा हूं। उस संत ने मेरे से पूछा कि सच्चे संत की पहचान क्या। मैंने कहा महाराज सच्चे शराबी की पहचान क्या। बोले खूब दारू पीता हो। मैं क्या और भी होगी। अच्छा सच्चे भंगेड़ी की पहचान क्या। बोले खूब भांग पीता हो। सच्चे जुआरी की पहचान क्या, कि खूब जुआ करता हूं। मैं क्या नहीं महाराज, अभी भी हयात है करीब 88 साल के मेरे मित्र हैं। मैंने कहा सच्चे शराबी की पहचान है कि उसके संग में दूसरे शराबी हो जाए। सच्चे जुआरी की पहचान है कि दूसरे जुआ करने लग जाए। सच्चे भंगेड़ी की पहचान है कि दूसरों को भी भांग का रंग लगा दे। ऐसे सच्चे संत की पहचान है कि दूसरे के हृदय में भी संतत्व के गुण भर ले। जो अपने पास है वो दे बिना रहा नहीं जाएगा भाई। सिगरेट खूब पीता है तो किसी को न किसी को दिए बिना आप नहीं रहेंगे सिगरेट। सच्चे संत की पहचान है कि अपने संपर्क में आने वालों में संतत्व के लक्षण कुछ न कुछ उसको पता चले चाहे न चले भर दे। ये सच्चे संत की पहचान है, ऐसा मेरा मानना है। वो सच्चे संत की पहचान है कि कुछ न कुछ संतत्व के लक्षण भर दे, और वे लक्षण है 11। 11 में से तुम्हारे में अगर कोई 1, 2, 4 लक्षण दिखते हो तो आप समझना कि हम बापूजी के पास आए ठीक है। अगर कोई भी लक्षण नहीं दिखता तो आप उठ के सदा के लिए चले जाना, फिर मेरे पास आकर टाइम बर्बाद मत करना, दूसरे कोई महापुरुष को खोज लेगा। मैं 11 गुण बताता हूं शास्त्रों के, उसमें से कोई भी गुण आपके जीवन में आया हो तो आप समझना कि आपका आना सार्थक हो रहा है। अगर कोई भी गुण नहीं आया तो आप समझना हम गलत जगह पर आए। सीधी बात, आप कोई दूसरा गुरु कर लोगे मुझे खुशी होगी। आपने जो मत्था टेकने में कभी कोई चीज वस्तु रखी हो मेरे से मांग लेना, मैं वापस दिला दूंगा। मैं 11 गुण पढ़ता हूं। संत के संपर्क में आने वाले साधक के जीवन में इन 11 गुणों में से कोई न कोई गुण आना ही चाहिए। अगर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो तो या तो पावर हाउस नहीं है, अथवा तो फ्रिज में या गीजर में या आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ है। जयराम जी की। नारायण 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 नारायण। और संत के संपर्क में आने वाले को 6 सद्गुण अपने में भर लेने चाहिए। इस गुरु पूनम पर्व का मैं नया पाठ तुमको सुना देता हूं, फिर परीक्षा के 11 गुण भी तुमको सुना दूंगा। बोलो 6 प्रकार के सद्गुणों का नया पाठ सुना दूं कि तुमको 11 गुण वाली बात सुना दूं? बोलो। ग्यारह गुण वाली सुन लो। संत महापुरुष के संपर्क में आने के पहले षड विकार, हिंसा, शोक, भय, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ भाषण पहले जितना था अगर उतना ही है तो आपने कोई फायदा लिया नहीं अथवा आपको कोई फायदा मिला नहीं। दूसरा गुण ये चेक कर लो, शारीरिक, मानसिक और साहित्यिक, कुसंग पहले जैसा है तो आपने संत का फायदा नहीं लिया अथवा तो संत के पास संतत्व नहीं है। आपका किताब पढ़ने की रीत, अगर कुछ साहित्य पढ़ रहे हो संत के संपर्क के बाद भी, कुछ संग कर रहे हो, कुछ कर्म कर रहे हो और मानसिक स्थिति जरा से सुख में सुखी और जरा से दुख में दुखी पहले जैसी है तो आपने फायदा नहीं लिया अथवा संत ने संत के पास फायदा देने की योग्यता नहीं। तीसरी बात, जगत के विषयों की पहले जितनी स्मृति थी, दुनिया के सुखों की भोगों की जितनी लालसा थी, स्मृति थी, प्रीति थी, उसमें कमी आई है तो समझो संत का संग से फायदा हुआ। आपने फायदा लिया, उनका फायदा अपने को मिला। चौथी बात, आपके जीवन में अगर संसारी आसक्ति बढ़ी है, राग बढ़ा है तो आपने फायदा लिया नहीं अथवा उन्होंने लिया नहीं। अगर आसक्ति और राग घट गया है, पहले टिप टाप के बिना नहीं बैठ सकते थे, अब जहां कहीं बैठ जाते हैं, पहले जरा सी बात में दुख ज्यादा होता था, अब उतना नहीं होता, पहले सुख भी ज्यादा होता था, अब उतना नहीं होता, तो समझो आपने संत का संग किया है। अगर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा तो आपने संत का फायदा नहीं लिया अथवा संत में फायदा देने की योग्यता ही नहीं। छठी बात, लाभ हानि सुख दुख में पहले जितनी उछल कूद होती थी अभी उतनी नहीं होती तो आपको सत्पुरुष का संग है। अगर पहले जितनी उछल कूद होती है लाभ हानि में तो आपको सत्पुरुष का संग नहीं है अथवा आपने फायदा नहीं। छठी बात, बुद्धि, मन, इंद्रियां जितना पहले सुख सुविधा और मजा लेने में भटकती थी अगर वैसे की वैसी भटक रही है तो आपकी प्रगति अथवा उन्होंने की नहीं या आपने कर होने नहीं दी। बुद्धि, मन, इंद्रियां भोगों से कुछ अंश में या अधिक अंश में हटी और भगवान में लगी तो समझो महापुरुष का संपर्क सार्थक हुआ, आपने फायदा लिया। सातवीं बात, आपको सत्संग सुनने में रुचि हुई, कीर्तन में रुचि है, सुमरण में मधुर रुचि है तो आपने फायदा लिया और महापुरुष है, आपको फायदा दिया। आठवीं बात, देवी संपदा, सज्जनता के गुण आपके बढ़े तो समझो आप सभी गुण एक साथ किसी में नहीं बढ़ेंगे, कोई एक दिन में पीएचडी नहीं हो जाता है। कोई न कोई अच्छे गुण आए तो सात्विक संपदा आए, अच्छे गुण नहीं आए और संत के संपर्क के बाद बुरे दुर्गुण आए तो आपने फायदा नहीं लिया, अथवा दोष दर्शन किया, अथवा उनमें बुराई आई। आप सुल्फा पीने लग गए संपर्क में आकर, आप जरा जरा बात में डंडा उठाने लग गए, जरा जरा बात में दुखी होने लग गए। मतलब पहले से अगर सज्जनता आई, सात्विकता आई, तो समझो आपको महापुरुष मिले और आपने कुछ फायदा लिया है। अगर पहले से तमोगुण आया है, आसुरी गुण आए हैं, शराब आया है, कबाब आया है, सट्टा आया है, जुआ आई है, या और कोई नीच कर्म पहले से बड़े हैं, तो आपकी सात्विक संपदा से आप गिर गए। आप उसी जगह को, उसी संत को, अथवा अपने स्वभाव को जल्दी बदलिए। जहां कमी हो, गोला कंडम हो तो गोला बदलिए, और पावर हाउस कंडम हो तो पावर हाउस की लाइन बदलिए, फ्यूज कंडम हो तो फ्यूज बदलिए। अगर फ्यूज कंडम है तो फ्यूज को बदलिए, पावर हाउस कंडम है तो पावर हाउस बदलिए, और गोला कंडम है तो गोले को बदलिए। समय अजाया न गवाइए। और कोई यहां से चला जाएगा, मेरे साथ गुरु शिष्य का संबंध तोड़ के चला जाएगा, तो मैं उसको श्राप नहीं दूंगा और मैं उस पर नाराज नहीं हूंगा। मैं वैसे भी श्राप देने से बहुत डरता हूं, श्राप देने का मेरे में कहां ताकत, वरदान श्राप देने की मेरी कोई योग्यता कोई ताकत नहीं है। कभी ऐसा सहज में ईश्वर की लीला में कुछ हो जाए तो हो जाए, मैं अपनी तरफ से किसी को वरदान दे दूं, श्राप दे दूं, सिर पे हाथ रख दूं, ऐसा मेरा अपना कोई हो नहीं। एक विजिलेंस के बड़े अच्छे अधिकारी उधर आए थे चंडीगढ़ में, सब परिवार, तो लोगों ने बताया बड़ी श्रद्धा रखते हैं उसे, आए और जिद ले बैठे, बापू सिर पे हाथ रखो। मैं कह मैं फिर घूम फिर के बापू जरा सा सिर पे हाथ रखो, नहीं रखा। फिर दो पांच मिनट फिर बोले बापू जी एक बार जरा सा सिर पे हाथ रखो। मैं कह नहीं, फिर वो बैठे तो मैंने सत्संग में सुनाया, सिर पे हाथ रखना ये तो हमारी ताकत नहीं है, लेकिन नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की निगाहों में आ जाता है और होलसेल में काम होता है। और उस विद्या को मेरे को किसी महापुरुष ने बताया, एक एक को क्या वो तुमको मैंने कई बार बताया है, एक मिनट में हजारों आदमियों को वो पैग पिलाया जा सकता है। ऐसे संत मुझे मिले थे। नौवीं बात, संत भगवान के अनुकूल आपका आचरण व्यवहार हो रहा है तो आप फायदा ले रहे हैं संत से, भगवान से, श्रद्धा से। अगर संत के विपरीत हो रहा है, संत बोले जाओ सेवा करो और आप झाड़ी में भटक रहे के दर्शन करेंगे दर्शन करेंगे। कई लोग टूर में हम घूमते ने वहां भटक रहे हैं, उन्होंने कोई फायदा नहीं लिया, जो भी हम बोलते उससे विपरीत करते हैं टूर वाले जयराम जी की, उन्होंने कोई फायदा नहीं लिया, वो तो सेवाधारियों के लिए भी मुसीबत बन जाते हैं। वो आवारा मन के लोग होते हैं, न वरती, जो वरे नहीं कहने से, शास्त्र संत और माँ बाप की आज्ञा से जो अपने मन को वार न सके उसे आवारा कहा जाता। तो कुछ लोग हमें जहां जाते हैं वहां पीछे पीछे भटकते भी हैं, वे आवारा लोग होते हैं। ऐसे आवारों से सेवाधारी भी खफे हो जाते हैं और हम तो उनसे दूर की राम राम जय जय। तो कोई आवारा आ गया और फायदा नहीं लिया तो उस आवारा का आवारापन दोषी है, इसमें सेवाधारी या संस्था या संत दोषी नहीं है। लेकिन जो भी आए किसी को फायदा नहीं हुआ तो फिर वो संस्था में कोई दम नहीं, वो संत में कोई दम नहीं, सीधी बात है जयराम जी की। अगर फायदा नहीं हुआ होता तो यहां सीए और सरकारी वकील और सलाह देने वाले और न्यायाधीश और चीफ जस्टिस जैसे लोग घंटों भर बैठते हैं तो मुझे लगता है कि आदमी ऐसे ही बैठे संभव नहीं है, फायदा होता होगा तभी आते हैं फिर से। इसलिए मुझे थोड़ा संतोष भी है अपने गुरु के प्रसाद पर, फिर भी मैं आपको छुट्टी देता हूं कि अगर आपको कोई फायदा नहीं हो तो आज से ही आप मेरा त्याग कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। दसवीं बात, संत महापुरुष के संपर्क में आने के बाद आपको इष्ट का भगवान का स्मृति अच्छी लगती है तो आपने फायदा लिया, उन्होंने दिया। अगर भगवान का नाम आपको अच्छा नहीं लगता है तो उन्होंने फायदा नहीं दिया, आपने लिया नहीं। ये आप थर्मामीटर से जांच लेना अपना अपना। ग्यारहवीं बात, उनके संपर्क में आने से आपके हृदय में परोपकार सेवा का सद्गुण विकसित हुआ तो आपने फायदा लिया है। और दूसरे का फायदा उठाकर चल मेरे भैया तो जा, तो आप वो स्वार्थी आवारा है या तो फिर संत के पास कोई दम नहीं। जयराम जी की। इन 11 चीजों में से आपके पास कोई न कोई सद्गुण आया हो तो दूसरे सद्गुणों को लाइए, एक आया तो दूसरा लाइए, पांच आए तो छठा लाइए, छह आए तो सातवां लाइए, और आधे आए तो पौना लाइए, पौना आया है तो पूरा लाइए। अगर कतई नहीं आया तो मैं आंख बंद करता हूं, आप चुपचाप उठ के चले जाओ। ऐसा नहीं बोलना कि उठना तो है लेकिन बापूजी देख रहे हैं, जा सकते। एक मैं आपको सत्य घटना सुनाता हूं। हरि बाबा हो गए आनंदमय मां के प्यारे संत। हरि बाबा से आनंदमय मां, उड़िया बाबा, हरि बाबा, हाथी बाबा, ये समकालीन संत अभी अभी संसार से विदा हुए, बड़े ऊंचे कोटि के ब्रह्मज्ञानी संत थे। तो हरि बाबा से पूछा गया कि आप कैसे संत बने। बोले हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो रोज एक संत भिक्षा लेकर आते थे, भिक्षा लेकर आते थे और फिर वो झूला टांग देते थे, हमारे साथ खेलते थे। तो एक दिन उनके पीछे कुत्ता लगा तो कुत्ते को बोला आज नहीं दूंगा, जा मेरे को नपातुला मिला है, आज नहीं मिलेगा, तू अपनी पूंछ हिला के और भिक्षा कर ले। तो कुत्ता फिर अरे क्या हूं कुत्ता, नहीं मिलेगा, जा नहीं दूंगा, ऐ करता है, मानता नहीं, जा जा तू अपना पूंछ हिला के भिक्षा मांग ले। तो हम देखते रहे कि कुत्ता कैसे जाएगा भिक्षा मांगेगा, तो हम खेलना छोड़कर बाबा के नजीक आए। बाबा आगे बाबा पन्ने में, अरे बोले मानता नहीं बेवकूफ, उल्टे पैर जा। और बाबा आगे अपने बाबा पन्ने में उल्टे पैर जा तो कुत्ता मुंह इधर और पूंछ पीछे और यूं रिवर्स में जाए। टू व्हीलर रिवर्स में नहीं जाता लेकिन कुत्ता रिवर्स में जा रहा है। हम दंग रह गए कि हमारे साथ खेलने वाले बाबा, ये आपके पास कौन सा मंत्र है। बोले एक में सब, सब में एक, यह तू वह और मैं तू यह और वह, इन सब को जो प्रकाशता है वो सब में एक है, उस एक में टिक कर कभी भी कुछ होता है तो वो सत्य संकल्प हो जाता है। योगी का योग उसी से सामर्थ्य लेता है, तपस्वी की तपस्या उसी से समर्थ होती है, ज्ञानी का ज्ञान उसी से चलकता है, और दुनिया में जो भी सुख शांति माधुर्य और कर्म का नियंता है वह वही है, वही है। अभी कहते हो क्योंकि शरीर को मैं मानते होता, पर शरीर को मैं नहीं मानते हैं तो ऐसे महापुरुष कहते हैं वही मैं हूं। रामतीर्थ को कहा गया कि तुमको ईश्वर चाहिए, बोले नहीं नहीं। तुमको ईश्वर मिला, बोले नहीं मिला। तुम ईश्वर पाना चाहते, बोले नहीं। तो आखिर क्या कि मैं वही हूं जिसको लोग पाने के लिए तड़पते, तो कि वही है तो क्या आप कौन है, बोले मैं ब्रह्म हूं। तो बोले क्या चांद तुमने बनाया है, तारे तुमने बनाए महाराज, सूरज तुमने बनाया, बोले हां मैंने बनाया और तब से चल रहे मेरी आज्ञा में। बोले तुम तो अभी आए 32 साल के 33, अरे बोले ये अब भी आया 32 33, मैं तो अनादिकाल से था, आदि सत्य जुगादि सत्य है भी सत्य नानको से भी सत्य। ये बड़ा ज्ञान भारी है आम आदमी के सामने इसका बयान भी करना,
उचित नहीं लगता। लेकिन मैं आपको आम आदमियों में नहीं गिन रहा हूं। ये इसको कहते हैं सात्विक ज्ञान। इसलिए कहते हैं कि यह मैं तू यह वह का इसमें आरोप करते हैं, इसलिए कृष्ण ने सात्विक कहा। वास्तव में यही ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, आत्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। देवताओं में भी वही है, दैत्यों में भी वही है। आप सज्जन होते हो तभी भी वही है, और आप दुर्जनता का व्यवहार करते हो तभी भी ज्ञान प्रकाश वही का वही है। आपने चुप कर पाप किया तभी भी कोई देखने वाला वही, और चुप कर पुण्य किया तो देखने वाला वही मिलेगा। गठरी ले जा रही है, भैया जरा गठरी मेरी उठाना, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आगे गया, उसके मन में बेईमानी आई कि इस गठरी में चांदी की थाली थी और सोने के ठाकुर जी हो सकते हैं। घोड़ा वापस लौटाया, भैया ये गठरी दे दे, मैं ले जाता हूँ। बोले अब नहीं दूंगी अब नहीं दूंगी। बोले क्यों, अभी तो हाथ जोड़ रही थी। बोले अब तेरे मन में बेईमानी आई, उसको जो जानता है वो मेरे मन को कह रहा है कि तू लेके मेरा बेटा भाग जाएगा, वो है वास्तविक हितेशी परमात्मा। इतना सरल है। कभी कभी साधकों को महसूस होता है क्या गजब हो गया, ये ठग को ठग पहचानने का ज्ञान कौन देता है और सतगुरु को सतगुरु पहचानने का ज्ञान कौन देता है, वो वास्तविक परमात्मा देव। किसी का कोई आपने ऐप देखा नहीं, लेकिन उस आदमी को देखकर आपको डाउट हो जाता है और वो कई कसमें खाता है, फिर भी आपका वास्तविक ज्ञान नहीं मानता है। और कोई कुप्रसिद्ध व्यक्ति आ गया और आपके पास आया और उसने कोई बात कह दी, बोले भले ही ऐसा है वैसा है लेकिन अभी ये सत्य कहता है, तो सत्य का प्रकाश देने वाला असत नहीं होता है, वो सत्य स्वरूप है। इतना निकट है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वास्तविक सुंदरता वह है जिसके जीवन में श्रद्धा है, विश्वास है, शास्त्र का ज्ञान है, सत्चरित्रता है, संयम है। चाहे कुरूप सुकरात जैसा हो फिर भी वो सुंदर है, और चाहे कितना भी कोई सुंदर हो, सिकंदर हिटलर जैसा, कंस जैसा, कितना भी पाड़े जैसा हो, लेकिन जिसमें काम क्रोध लोभ मोह कपट धोखा दड़ी और शास्त्र से विमुख, औरंगजेब जहां पना लोग भले कहते हो, लेकिन भाई दाराशिकों को मरवा दिया, पिता को जेल किया, तो सोने के कलश में ऊंचे तख्त में बड़ा हुआ विष का घड़ा है। अष्टावक्र 12 साल के हैं, टेढ़ी टांगे हैं, काला रंग है, नाटा शरीर है, फिर भी श्रद्धा है, विश्वास है, और वास्तविक ज्ञान में मैं पने की स्थिति है। अष्टावक्र 12 साल के सतगुरु हैं और विशाल काय विशाल राज्य के धनी जनक राजा सत शिष्य बनकर सौभाग्य बना लिया। ये सात्विक श्रद्धा, परम श्रद्धा इसको कहो, श्रद्धा की पराकाष्ठा है। इस चीज को पाने के लिए तड़प हो जाए तो इसी में टिकने की। राजसी श्रद्धा क्या है? राजसी श्रद्धा है कि शरीर में मैंपना, वस्तुओं में मेरापना, और कुछ अच्छा कुछ बुरा करके यहां और वहां मजा लेने में लगा रहना। जयराम जी की ये राजसी श्रद्धा है, ये राजसी गुण है। बस कुछ भी हो जाए, अपने को अच्छा लगे, अपने को मजा आ जाए। तामसी श्रद्धा, तामसी ज्ञान, कृष्ण ने उसको ज्ञान ही नहीं कहा, संकोच में आ गए, तामसी योग, तमस कह दिया। श्रद्धा देवा यजमाना वायु गोपा उपासते श्रद्धा हृदया या कृत्या श्रद्धा विंदते वसु। ऋग्वेद कहता है श्रद्धा हृदय की उच्च भावना का प्रतीक है, इससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन सफल होता है और वह ऐसा धन है। मेरा पढ़ने में गलती हो गई। श्रद्धा हृदय की उच्च भावना का प्रतीक है, इससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन सफल होता है और वह धन प्राप्त कर सुखी हो जाता है। वह आत्मधन परम धन प्राप्त करके सुखी हो जाता है। निर्धन होते हुए भी धनवानों को दान कर सकता है, सत्ता होते हुए भी कईयों को सत्ता का दान कर सकता है। उस परम तत्व की श्रद्धा का फल ऐसा होता है। महाराज उन्नति के लिए ये सात्विक श्रद्धा परम परम हितकारी और जरूरी है। श्रद्धा जीवन की सबसे कोमल मधुर और सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है कि दुखों में भी हमारे को सुरक्षित रख देती है। चिंता और भयों में भी श्रद्धा की थी कोई बात नहीं, अब ये सब तो भगवान तो है ना, ये है ये कर लेंगे कोई बात नहीं। और श्रद्धा जिसके जीवन में नहीं हो तो डक वो तो घुट घुट के मरेगा जरा जरा बात। श्रद्धा बिना धर्म न होई। श्रद्धा से आप पत्थर की मूर्ति पर भी एक पानी का लोटा चढ़ाते हो तो धर्म हो जाता है। और विश्वास के बिना सिद्धि नहीं मिलती। प्रारंभिक विश्वास से श्रद्धा पैदा होती है और श्रद्धा की दृढ़ता से दृढ़ विश्वास पैदा होता है और दृढ़ विश्वास और श्रद्धा एक हो जाते मनोवांछित फल प्रकट हो जाता। शास्त्रों में वर्णन किया गया कि भक्त के आगे भगवान प्रकट हो जाते हैं तो क्या वैकुंठ अधिपति वैकुंठ से आते हैं, अथवा कृष्ण फिर से बंसी बजाते हुए कहीं चले गए थे आते हैं, तो कोई बंसीधर कृष्ण चाहते, तो कोई अर्जुन को उपदेश देने वाला कृष्ण चाहते, तो कोई बाल गोपाल कृष्ण चाहते, तो कृष्ण वास्तविक में किस रूप में कहां बैठे। तो मानना पड़ा कि श्रद्धावान की श्रद्धा उस अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप की सत्ता से उसके श्रद्धा के अनुरूप भगवान को प्रकट कर देती है। भगवान कहीं से आते नहीं और फिर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। ये सूक्ष्म ज्ञान है, आम आदमी को नहीं सुनाया जाता है। ये सत शिष्यों के लिए है, गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर कहने जैसा ज्ञान कह रहा। राजगोपालाचार्य की श्रद्धा थी और श्रद्धा के बल से उन्होंने बारिश करवा दी। दुनिया जानती 1956 में रेड स्टोन लेक सूख गया था, मद्रास के लोग तरस रहे थे पानी के लिए और प्रार्थना की और कई लोगों की श्रद्धा एकाकार हुई। प्रार्थना हुई तो रात्रि को 10 बजे बरसा तो 1956 में ऐसा बरसा कि मद्रास की सड़कों पर नावें चलानी। नामदेव ने श्रद्धा के बल से कुत्ते के मुख से बंसीधर को प्रकट कर दिया और नामदेव ने श्रद्धा के बल से कुएं में झांका कि मुझे ही प्यास लगी है, नहीं मैं नहीं पीता हूं तू पीता है। तो ज्ञानेश्वर महाराज सिद्धियों के बल से नीचे कुएं में जाकर करमंडल लाया और मैं तुझे भोग लगाऊं, नहीं माजा पांडुरंगा विठल मैं तुझे सिद्धियों का पानी नहीं पिलाऊंगा। क्या तू निशा है, तू निर्मल है, तेरी प्यास बुझाने के लिए सिद्धियों की कृपा चाहिए, नहीं माजा कृपा ना। ऐसे करते करते दो बूंद आंखों से कुएं में गिरे और कुआ चल 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 रहा और नामदेव ने चुल्लू भर के लौट, ठाकुर जी तुम्हारी कृपा का पानी तुम ही पियो मेरे पांडुरंगा। ये श्रद्धा का चमत्कार है, सात्विक श्रद्धा का। गुल्फ मैसिंग के जीवन में 1910 में जर्मनी के बच्चे में जो ये चमत्कार है वो भी श्रद्धा। ये कथाएं तुमने पहले सुनी हुई है, आज कथा का समय नहीं है। श्रद्धा और विश्वास का संयोग होने से अलौकिक प्रसन्नता, अलौकिक संकल्प बल पैदा होता है। शोक रूपी अंधकार नाश हो जाता है, असंभव रूपी कल्पना विकल्प नाश हो जाता है और सारे अभाव का अभाव हो जाता है। श्रद्धा विश्वास दृढ़ है तो पहनने को लंगोटी है तीन ठिगड़े वाली, चला जाएगा कोई बात नहीं। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, उस समय लंगोटी नहीं कच्चा था, ये कपड़े भी थे, इस रंग के नहीं तो थे। श्रद्धा और विश्वास, यही बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, ये रुपयों के बल से नहीं कहा जा सकता है। डंडे के बल से, सत्ता के बल से जंगल में ऐसा कहेगा तो भूखा मर जाएगा, लेकिन श्रद्धा विश्वास के बल से कहा और अभी तक टनाटन खिला रहा है, आगे भी वही ख्याल रखेगा, नहीं रखे तो उसकी मौज की बात है, अपना काम बन गया। तो एक श्रद्धा अपने वास्तविक स्व में श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, विश्वास, ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और फिर वो आदमी में तीन गुण आ जाएंगे, शारीरिक कष्ट सह लेगा। 9 बजे के बैठे और 12 बज गए, किसी की ताकत है उठ जाए? डंडे के बल से कोई नेता या पुलिस या कोई सिपाही भारत का या विदेश का इतने आदमी को बिठा के दिखा दे तो मैं उसका सदा के लिए नौकर बन जाऊंगा? नहीं बिठा सकता है। अभी जो आप बैठे हैं तो गुरु शिष्य के बीच की वो श्रद्धा रूपी एक पतली डोर के बल से बैठे हैं। दिखती पतली है लेकिन बड़ी बलवान। गुरुजी हम उठेंगे तो गुरुजी पसंद नहीं करेंगे। श्रद्धा विश्वास है तो भगवान और गुरु की पसंद की के कार्य करने में हिम्मत आ जाएगी, कष्ट भी सह लेंगे और वाणी में भी कुछ सद्गुण आ जाएगी, भगवान में भी विश्वास होगा। गुरु में श्रद्धा नहीं तो भगवान में श्रद्धा क्या खाक करेगा, और भगवान में श्रद्धा नहीं तो गुरु में क्या श्रद्धा खाक करेगा? एक दूसरे के पोषक होते, ईश कृपा बिना गुरु नहीं। तो राजसी श्रद्धा शरीर को मैं और संसार की वस्तुओं को मेरी, और यहां भी सुखी और मरने के बाद भी सुखी, उसी में भटकाती है। तामसी श्रद्धा तो शरीर ही मैं हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सत्ता वाला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये क्या समझता है, उसी में उलझ जाता है। तामसी श्रद्धा वाला, तामसी ज्ञान वाले का तो बुरा हाल है। राजसी ज्ञान वाला कुछ अच्छाई कुछ बुराई साथ में, सात्विक ज्ञान वाला अच्छाई की तरफ चलाएगा, बुराई हो भी जाएगी, पुरानी आदत है, रजोगुणी वातावरण में रहते हैं तो फिर अंदर खटका होगा कि ठीक नहीं, क्योंकि मैं तू यह वह का प्रकाशक उसके बुद्धि में प्रकाश देगा, क्योंकि सात्विक श्रद्धा है। नौकरी है, धंधा है, पत्नी है, बेटा है, लेकिन अंदर से सात्विक ज्ञान है, सात्विक श्रद्धा है तो खटका होगा कि आयुष्य नाश हो रही है, आखिर कब तक मर जाएं, उसके पहले क्या अनाथ हो जाएं, अनाथ हो जाएंगे और किसी के गर्भ में गिरे, अथवा नरकों में जाएं या स्वर्ग में भोग भोग कर चले आए, आखिर क्या। सात्विक ज्ञान है, सात्विक श्रद्धा है तो उसको विचार पैदा होगा, विवेक पैदा होगा, षट संपत्ति पैदा होगी। षट संपत्ति माना शम, मन को रोकने का थोड़ा, अभी मन को रोक के बैठे, दम माना इंद्रियों को रोकने का थोड़ा बल बढ़ेगा, तितिक्षा माना कष्ट सहने की शक्ति बढ़ेगी, समाधान, गुरु शास्त्र के विरुद्ध कोई कुछ बकता है या कुछ अपना मन आता है तो उसको अनुकूल विचार करके समाधान करेगा, ईश्वर प्रणिधा, शम दम तितिक्षा, ऊपर थी जो छोड़ दिया है शराब कबाब या ज्यादा बोलना या फिल्म उल्टी कर दिया वो फिर रुचि नहीं होगी और फिर से कभी किया तो फिर मन में उबान आएगी। तो समझो आपको सात्विक श्रद्धा सात्विक गुरु सात्विक ज्ञान का प्रकाश मिला है, नहीं तो फिर आप ढूंढ लीजिए कोई नया पावर हाउस। नारायण 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 नारायण। श्रद्धा नेक ज्ञान से सात्विकता बढ़ाएगी, श्रद्धा फल की इच्छा बिना भी सत्कर्म करने में रुचि बढ़ाएगी और सद आचरण के तरफ रुचि बढ़ेगी। तो अब आपको आखिरी थोड़ा सा मिनट रोकता हूं फिर छुट्टी करता हूं या तो तुम्हारे पास आता हूं। आपको नया पाठ दे रहा हूं, लिख लो हृदय पटल पर, बड़ा तेजी से उन्नति करेगा। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से सवा दो घंटे से ब्रह्म मुहूर्त चलता है, फिर एक घंटा पहले उठे तो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे, आधा घंटा पहले उठे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना, ये नया पाठ ही कह रहा हूं। सूरज उगने के बाद नहीं उठना, सूर्योदय से पहले उठना, सवा दो घंटे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। फिर जैसी शरीर की स्थिति, ऐसा नहीं कि तुम जल्दी एकदम जल्दी उठो और फिर थके थके रहो, ऐसा भी नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूर्व अथवा तो उत्तर के तरफ, दक्षिण सिराना होगा तो उत्तर के तरफ मुंह हो जाएगा, पूर्व या उत्तर के तरफ थोड़ी देर शांत बैठना। और जब भी ध्यान भजन करे तो उत्तर या पूर्व तो आध्यात्मिक तरंग और उन्नति। तीसरा है आसन पर बैठकर साधना नियम करना, जिससे जब ध्यान करोगे तो आध्यात्मिक ओरा बनेगी और खाली धरती पे बैठोगे तो अर्थिंग मिलकर वो आध्यात्मिक ओरा धरती ले जाएगी। आप ठन ठन पालना रहे तो आसन ऐसा हो विद्युत का कुचालक। और घर में जब करते हो तो इस प्रकार का आसन बिछा दो, कंबल जैसा दुगना कंबल करके उस पर सफेद कपड़ा और कपड़ा धरती पे न लगे। तो कभी बैठे बैठे ध्यान किया और थके तो कभी लेटे और श्वास उश्वास को गिना और मैं उस वास्तविक ज्ञान स्वरूप जैसे नारायण भगवान वैशाख की पूर्णिमा के बाद चार महीना उस वास्तविक ज्ञान स्वरूप में नारायण समाविष्ट होते हैं योग निद्रा में, ऐसा में दो घड़ी एक घड़ी पांच घड़ी योग निद्रा कर रहा हूं। ये नया पाठ है आपके लिए। मैं तू यह वह का प्रकाशक में मैं डूब रहा हूं। बड़ा बल है, बड़ा लाभ है। ये समझो आपको मैं तोहफे पर तोहफे दिए जा रहा हूं। इस बार भले हाथ से प्रसाद बाहर का न मिले तो उसकी फिक्र न करना, नजीक से दर्शन न मिले अथवा दोना न मिले तो फिक्र मत करना। ये दिल के दोने में दे रहा हूं और अपने दिल से ही बांट रहा हूं, इसीलिए अब तुम लाइन लगाने का शौक भूल जाना। दिल के दोनों में लेना और दिल के दोने से ही लेना। तो तीन बातें हो गई, ब्रह्म मुहूर्त, पूर्व उत्तर, मुंह, आसन। चौथी बात है जीभ को आप तालू में लगाकर ध्यान भजन करें, जिससे आपके ऊपर दूसरे का प्रभाव ना पड़े और आपका भय भाग जाए। क्या ख्याल है ना, एकदम नई गुरु पूनम का नया खजाना। कोई भी आपका बॉस हो, धीरे धीरे बॉस आपका असिस्टेंट बन जाएगा। यहां कई बॉस असिस्टेंट होके आते हैं, यहां कई बॉस 1000 आदमी है विजिलेंस के जिनके हाथ नीचे, वो भी यहां मेरा असिस्टेंट होके आएगा। जयराम जी की, मेरा बॉस नहीं होता। प्रधानमंत्री भी आता है तो बॉस होके नहीं आता है, पता है ना आपको। ऐसी गुरु की प्रसादी दे रहा हूं, हद हो गई और क्या, इससे ज्यादा कौन सी गुरु पूनम करोगे।
तू भी तारा मन भी काट ले, बजा ले ताली, बोल दे जय, जय भी बोल दे, ताली भी बजा दे, तू भी तारा मन भी काट ले भाया, फिर भी तारा मन भी काट लो, बहुत दिन देर से स्टॉक रुका है तो। मैं भी अपने मन की काट लेता हूं। नारायण नारायण नारायण। बस आप तो बस करो, अभी काटते रहोगे। अच्छा जी, कितनी बातें हो गई? 6 बातें हैं, हाँ 4 हो गई, जीभ तालू में लगाओगे। चौथी बात, पंचम बात तो परमेश्वर को प्रकट करने वाली है, आरोग्य की कुंजियां प्रकट करने वाली है, अकाल मृत्यु को भगाकर लॉन्ग लाइफ जीवन देने वाली है। 5वीं कुंजी, समय कम है, आप लोग थके होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, ये दूसरे सत्र में कह दूंगा, कह दूं। आप लोगों को प्राणायाम तो सिखाए हुए हैं, ध्यान भी सिखाया हुआ है, अब क्या करोगे कि योनि को सकोड़ के, शौच जाने की इंद्री को सकोड़ के बैठे, इसको बोलते हैं मूल बंध। इस मूल बंध से बुरी आदतों को मिटाने का रामबाण पैदा हो जाएगा आपके पास। उड़ियान बंध, पेट संबंधी तकलीफें तो ठीक होने लगेगी, लेकिन और भी आध्यात्मिक लाभ होंगे। कंठ को, ठोड़ी को छाती की तरफ दबा, त्रिबंध करके प्राणायाम ही करना 5। अभी तो करते थे प्राणायाम, लेकिन अब त्रिबंध लगा कर करना। आयु, आरोग्य और आत्मोन्नति। ठीक है, 5वीं बात हो गई। 6ठी बात है, एक आभा मंडल बना लो। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया तो आप यहां बैठे हो, मेरी कार कौन चला रहा था कि तुम्हारा फलाना, मेरा प्यारा, तो आप यहां बैठे हैं, तुम्हारा मन वहां गया नहीं, लेकिन मन में प्यारा और कार आई, दुखाकार वृत्ति पैदा की, तरंग आई बाहर की शब्द के द्वारा। ऐसे जो कुछ उथल पाथल हिलचाल होती है बाहर का, देखकर सुनकर आपका मन तरंगित होता रहता है, विक्षिप्त होता रहता है, काम से, क्रोध से, लोभ से, बाहर के कामिक तरंगों में आप जाओगे तो आपको भी काम विकार आ जाएगा, कई कामी लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको भी काम विकार आएगा, कोई कामी नहीं आपको देखे या कोई कामी पुरुष देखे तभी भी आपको काम के तरंग काम की प्रेरणा दे सकते हैं, कामी लोगों के वाइब्रेशन से भी और उसकी निगाह से भी अथवा वातावरण में से भी होता है। तो ये बाहर के तरंग साधक को बहुत बहुत कुछ हिलाते रहते हैं, इसलिए साधक रूपी बीज धरती में गहरा उतर नहीं पाता। तो एक आभा मंडल तुम्हारे इर्द गिर्द बन जाए ताकि बाहर के तरंग आपको प्रभावित ना करे। तो आप जब जब करें, मैं अभी करवाता हूं, और जब करें तो चारों तरफ उस ओमकार की ध्वनि से एक ओरा मंडल बन रहा है, पहले भी एक दो बार मैंने बताया है, और उस ओरा मंडल को रोज थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते इतना मजबूत करो कि आप जाएं तो आपका सज्जन प्रभाव, सात्विक प्रभाव, ब्रह्मज्ञान का प्रभाव अथवा श्रेष्ठ साधक का प्रभाव दूसरों को फायदा दे, लेकिन दूसरों के कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, चिंतित तरंग आपको गिराए नहीं। अगर मैं फिसल जाता तो कितनी हानि होती। इतने लोग हैं, कोई ब्रह्मज्ञानी तो मेरे बीच में नहीं है, तो सभी की अपनी अपनी वासना, अपनी अपनी भावना, अपने अपने तरंग, अगर मेरा आभा मंडल मजबूत न हो तो उन तरंगों में मैं तो कहीं का कहीं खप जाता।
हालांकि मैंने ऐसा आभा मंडल नहीं बनाया, लेकिन गुरु ने उस आभा मंडल जिससे बनता है उसमें गुरु ने बिठा दिया है, इसलिए आभा मंडल बिना बनाए बना बनाया है। जहां जाता हूं मेरे आभा मंडल में सब आ जाते हैं, मैं सबके आभा मंडल में नहीं आता हूं। ये आपका अनुभव है और मेरा भी अनुभव है। अभी आप इतने सारे और दिल्ली के आदमी कोई पट जाए ऐसे नहीं है। दिल्ली वाले पटाने में बड़े चालाक होते और फिर भी तुम्हारे पटाने से मैं नहीं पट रहा हूं, मेरी आभा में अभी तुम हाजरा हजूर होकर बैठे हो। क्या ख्याल है? अभी तो सब बापूजी के बेटे होकर बैठे, बापूजी के बेटे तो अच्छा लगता है। मेरे को ये सुनने के लिए 4-5 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। मेरे को गुरुजी कहते बेटा, 4-5 वर्ष लगभग इंतजार किया। फिर ऐसा कोई अवसर आया, बापूजी ने कहा बेटा आना है तेरे को, तो गाड़ी में संकेत किया, तो मैं गाड़ी में बैठते बैठते बापूजी को यूं चिपक गया। बोले क्या करता है, क्या करता है? मैं क्या 4-5 साल से तड़प रहा था ये शब्द सुनने को। अच्छा बोले चुप बैठे, और आप तो मुफ्त में बैठे जीवन जाते फटाफट। अब तो हिम्मत आ जाएगा कि हम बापू के हैं, नरक की ऐसी तैसी, जमदूत की ऐसी तैसी। हरिओम हरिओम हरिओम।